ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक सारो टाइम के लिए और रोजाना के लिए एक ही लिंक है, जिसमें आप सहज जुड़ सकते हैं जब भी आपको सुविधा हो। यदि आप लिंक में जुड़ने में कठिनाई आ रही है या लिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मिल नहीं पा रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपके पास कोई अच्छा विचार है, अच्छा सुझाव है जिससे हम सबका हित हो सकता है, वो भेज कर आप सबका भला कर सकते हैं। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। बाबा की श्रीमत है, बाबा ने क्या श्रीमत दी है कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। ये है यथार्थ याद, क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं तो परमात्मा समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे। आत्मा तो परमात्मा नहीं, परंतु आत्मा और परमात्मा एक जैसे। यदि हमने आत्मा को अनुभव कर लिया है तो हमने परमात्मा को भी अनुभव कर लिया। ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह समझानी।
भाई जी, आत्मा समझ में आ गई तो परमात्मा भी समझना
आ गया। एक ही जैसे है ना, परमात्मा समझना अलग बात है, हमने उससे एक कदम आगे चलना है कि हमने अनुभव करना है मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा अनुभव कर लेता हूं तो मैं परमात्मा को भी अनुभव कर लेता हूं। मुझे कैसे पता लगे कि मैंने आत्मा को अनुभव कर लिया है, कौन बताएगा? कैसे पता चले कि मैंने दूसरे का नहीं, मैंने आत्मा को अनुभव कर लिया है?
मतलब अपने अंदर की जो भी इच्छा वे समाप्त हो जाती है आत्मा समझने से।
परमात्मा के गुण, आत्मा के गुण भाई जी, जब प्रकट होते हैं आत्मा में तो ये अनुभव होता है।
जब हम सारे बात बाबा को मानते हैं तभी अनुभव करते हैं। जब बाबा को
भाई जी वो सब आत्मा ही आत्मा देखने लगता
है, उसे सभी सिर्फ आत्माएं दिखाई देंगी, उनका देह दिखाई नहीं देगा। जब तक वो आत्मा नहीं देखना लगा, अपने आप को समझ सकते हैं कि मुझे आत्मा ही देखने की आदत पड़ गई है, तब समझना है कि मुझे अनुभव हो गया है कि मैं आत्मा हूं। मुझे यदि देह दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैं अभी तक अपने को देह समझ रहा हूं। और दूसरा भी इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता है, यदि वो आपकी देह को देख रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो तो चाहे वो पुरुष हो, समझ लो कि वो आप भी देह अभिमानी है। अभी वो अपने आप को आत्म अभिमानी नहीं बना सका है। मतलब ये पहचान अनुभव करने की, क्योंकि अनुभव हमने बहुत अच्छी तरह से समझकर करना है। अनुभवी होना माना हमें आत्मा ही दिखाई दे, देह दिखाई ही नहीं दे, देह का संबंध याद ही नहीं आएगा। अगली बात बाबा ने कही कि बाप को याद करो। ये हम अच्छी तरह समझते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तभी हम बाप का कहना मान सकते हैं, देह समझकर बाप का कहना नहीं मान सकते। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? आत्मा समझकर तो हम बाप का कहना मान सकते हैं, परंतु देह समझकर हम बाप का कहना नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पहला कहना ही हमने नहीं माना, पहली आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा वाले आगे क्या मानेंगे? पहली आज्ञा है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। पहला पाठ हमने स्वीकार नहीं किया, अगले पाठ स्वीकार हो ही नहीं सकते। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू बहस और चर्चा में क्या अंतर है? बहस में जिद होती है और चर्चा में सत्य तक पहुंचने का प्रयास। चर्चा करो बाबा कहते, परंतु बहस नहीं करो। बहस में जिद होती है अपने आप को सिद्ध करने की। वो कहता है कि मैं सत्य हूं, वो कहता है कि मैं सत्य हूं, फौजी आप सत्य हो, हार मान लो। उनसे कहो कि जब चर्चा करना चाहते हो तो हम आपके साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। आपको बहस करना है तो मेरी भी जिद है, आपकी भी जिद है। मैं अपने पिता परमात्मा को नहीं छोड़ सकता हूं, तुम अपने पिता परमात्मा को मत छोड़। सीधी बात, क्यों बहस करें, क्यों झगड़ा करें? क्योंकि जिसने परमात्मा का बात समझनी है वो समझ जाएगा, और जिसने नहीं समझनी है कितना आप उसके साथ सिर कपाई करेंगे, उसने नहीं समझनी तो नहीं सुनो। आर्ग्यू नहीं करनी, चर्चा करो। आप अपना तर्क रखो, वो अपना तर्क रखे, इसको कहते हैं मंथन करने। सबको अपने विचार रखने का मतलब है फिर जो सबकी सहमति हो वो ठीक है, बाकी सबकी सहमति से बाबा कहते हैं यदि गलत भी तय हो गया है तो आप उसको स्वीकार कर लो, आपस में झगड़ा नहीं करो। जब भी किसी बात पर सब विचार करने बैठे हैं, आप अपना तर्क रखो, माने ना माने, सबका फैसला जो हो जाए फिर आप अपने आप को पीछे हटा लो, ठीक है। बाकी मेरा विचार तो ये है, बाकी आप जो मानते हो ठीक है, फिर उसी अनुसार करो भी थे। संगठन के लिए ये बहुत जरूरी है, जिद में नहीं रहना है। जिद में रहेंगे तो संगठन नहीं रहेगा, संगठन टूट जाएगा। आर्ग्यू नहीं करना, ये अपने आप को अच्छी तरह समझना। प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रहती है। बुद्धि योग, बुद्धि का जो योग है वो एकदम पवित्र बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रहती है। बाबा ने उसके लिए क्या युक्ति रखी हुई है। उत्तर, 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे की को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ। शुरू शुरू में 7 दिन की भट्टी हुआ करती थी। जो भी नया आता था उसको 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता। जैसे मैं अभी देखता हूँ विपश्यना वाले इसको लागू करते हैं, कुछ और भी संस्थाएं हैं जो इसको लागू करते हैं। वहां आपको जाना है, आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन का है उनका जो चार्ज है वो आपको देना है। वो आपसे मोबाइल भी ले लेंगे, न्यूज़पेपर भी ले लेंगे, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया से कट गए, खत्म। आप अपने मोबाइल भी घर रख के आओ, सब कुछ घर रख के आओ। उनको हमारा नंबर दे दो, कोई इमरजेंसी कोई बात होगी तो वो हमें, हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आपने उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करना, उन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करना। भूल जाओ कि वो भी इस दुनिया में है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल जो है ना वो अपने उसमें लागू रखते हैं। 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितने भी दिन का उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। अलग अलग संस्थाओं के अपने अपने नियम है, यानी और उस दौरान उनको एकदम अपनी ही रूटीन से चलाते। कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, कब आपको खाना है, कब आपको क्या करना है, बड़ा स्ट्रिक्ट एकदम रूल जो है उनके रहते हैं। टाइम एकदम फिक्स रहता है, आपने एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आना है, एक्यूरेट टाइम पर सैर करने जाना है, क्या क्या करना है, रूटीन उनको वो कराते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी दिनचर्या यही रहती थी लगभग। आप आ गए, अब आपने यदि फोन कर लिया तो आपके 7 दिन से शुरू। मतलब ये सिक्स रूल होता था। यानी आपने घर के, आपको घर की याद आ गई तो आज से फिर 7 दिन से। मतलब कहने का यह है कि पहले बाबा ने इस प्रकार की भट्टियां भी कराई। मतलब तो कोई इतना टाइम रुकने को राजी नहीं होता, तैयार नहीं होता। तो धीरे धीरे उसमें भीड़ दी गई, क्योंकि पहले पक्के पक्के बनाने थे जिनको सत्यु की आदि की रचना कहेंगे, और उसके बाद जो है अपना थोड़ा ढील होती गई। अब तो कहते तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ 7 दिन बस, रोजाना रूटीन बना लो, एक बार आपकी आदत बन जाए। और मेरा ये रहा कि मैंने घर घर जाकर के कोर्स कराए। उसके बाद कहते भाई जी आप मुरली सुनाने भी रोजाना आया। मैंने कहा मैंने तो गलत आदत डाल दी। डालनी तो थी कि तुम रोजाना कोर्स करने के लिए आओ, तुम रोजाना आते तो तुम्हारी आदत पड़ जाती कि हमने मुरली सुनने के लिए भी जाना है। पर तो मैंने सोचा, लालच किया कि तुम, मैं ये एक जना मेरे पास कोर्स करने आएगा, मैं उनको कहता कि तुम अपने घर में कोर्स कराओ, सारा परिवार बैठ के करो। तो ये बात भी ठीक है, आप हमारे घर आ जाएंगे। मैं आ जाऊंगा। सबने बैठकर कोर्स किया, पड़ोसियों ने भी बैठकर कोर्स किया। पर तो बोले प्लीज भाई जी आप मुरली सुनाने भी रोज आना आया। जो पॉसिबल नहीं, असंभव। समझेंगे कुछ नहीं, मूंझ जाएंगे, क्योंकि उनको यदि कोर्स समझ में नहीं आया, बातें समझ में नहीं आई, ज्ञान समझ में नहीं आया तो वो समझेंगे। जी जाग सजनिया, जाग अब घर साजन आए। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है, फिर उसका अर्थ करना चाहिए। गीत सुनाकर क्या करना चाहिए, फिर उसका अर्थ करना चाहिए। वे सुनकर फिर उसका अर्थ, तो क्या होगा, वाणी खुलेगी। वाणी खुलेगी का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? किसकी बुद्धि का ताला खुलेगा?
आत्मा।
कौन सी आत्मा थी? सुनने वाले की, सुनाने वाले? कौन बताएगा? वाणी खुलेगी, क्योंकि उसे बोलना आ जाएगा। मतलब आप सोचिए कि हमने क्या सुनाना है, जब बोलेंगे तो आप बोलना सीखते जाएंगे। सुरेश भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया था कि हम क्लास के कोई भी बोला जो ना आते थे, योग में बैठते थे, कोई क्लास नहीं कराता था, तो कहा गया कि मैंने रखा कि कोई चेहरा बताने वाला हो, कुछ बोलने वाला हो, कुछ समझाने वाला हो। तो बोले कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। तो सूरज भाई ने बोलना शुरू कर दिया, तो बोलना शुरू कर दिया तो एक अच्छा वक्ता बन गया। तो मेन बात होती है बोलेंगे, बोलना शुरू करो। और जब तक बोलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक किसी को सुनाना शुरू नहीं करेंगे, तो आप बोल नहीं सकेंगे, वाणी खुलेगी नहीं। मालूम पड़ेगा कि कहां तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता, सारा राज तुम्हारी बुद्धि में एकदम चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। बाप के पास भी ये ज्ञान है, बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। ये बिल्कुल नया ज्ञान है, फल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वे नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं, भगवानों वाच मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को वा ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। कभी भी ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण किसी भी देहधारी को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्यों को कैसे पतित पावन कह सकते हो? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं। कोई आकर के शास्त्रों की, दुनिया की कही हुई बातों पर बैठ, वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है, वो ऐसे, अरे भाई वो सारे कहेंगे ना। एक माता को लगता है कि देना मेरे साथ डेथ हो गया, न्याय हो गया है, वो ऐसे कहते हैं, उसने आत्महत्या कर लिया, वो ऐसे कहते हैं, आज आपके ब्रह्मा कुमारी वाले ने ऐसे कहा, उसने भी ऐसे कहा, उसने। मैंने कहा बहन जी, सारी दुनिया जो भी बोल रही है वो बोल रही है, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। आपने क्वेश्चन लिख करके भेज देना है, मैं उसका जवाब लिख करके भेज दूंगा, वीडियो बनी हुई है वो भेज दूंगा, बहस नहीं। वो तो कहेंगे, विचारों को नहीं पता, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में थू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्री मत है मुख्य, बाकी है डिटेल, बाकी सारी डिटेल की बातें हैं। पहली पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझना, समझने के बाद आता है अनुभव करना। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है, जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है, बाप बैठ बीज और झाड़ का व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम कोई तो कोई समझ ना सके। नया आए और बाबा कहे उनको कि तुम सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हो, तो उस समय हम कैसे सुदर्शन चक्र, वो तो कृष्ण होता है, वो तो विष्णु होता है, हमें क्या बताते हैं, क्या पढ़ा, समझ नहीं। कोई समझ ना सके, वे तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। ये बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है, नया कोई भी सुनकर मुझ पड़ेंगे। इसलिए सात दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। ये जो सात रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये सब ये इस समय सात दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो सारा कचरा है वो निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी, इस दुनिया में सब कौन है, सारे के सारे रोगी है। सतयुग में ये रोग होते नहीं, ये आधा कल्प का रोग है, पांच विकारों का रोग बड़ा भारी है। आत्मा को पांच विकारों की बीमारी लगी हुई है, वो बहुत भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं, जानते हो हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है, काल काल महाकाल कहते, काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है, सिख लोगों को फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रिकुटी है, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी है। ये बाप बैठ सम जाते हैं, बाप को अपना तख्त तो है नहीं, अपना तख्त तो है नहीं। वे आकर इनका ये तख्त लेते हैं, इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को तौसी तख्त नशीन बनाते। तौसी तख्त क्या होता है, तौसी बोलते हैं मोर को, मोर की तरह बनाया हुआ सिंहासन, राजा का सिंहासन या तो शेर की तरह बनाया जाता है या मोर की तरह। यहां पर तौसी तख्त का मतलब है मोर की तरह बनाया गया सिंहासन, राज सिंहासन के पीछे ना ऐसे भी डिजाइन बनाया जाता है, हाँ, जो मोर की तरह, तो राजा का सिंहासन बनाया जाता है। तो तुम जानते हो वे तौसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। तौसी तख्त तो गाया हुआ है ना, गाया हुआ है ना, विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है, विचार करना है परमात्मा को भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते, कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकार में विनाश हो जाए, गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वे दस निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं, इसलिए क्या है, दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, क्या बोलो, सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, उनको ही क्या कहा जाता है, पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा, सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं, जहां तहां धुन लगाते रहते हैं, ऐसे मत मतांतर तो बहुत है, बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है, ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हो, या जैसे कि हम बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। ऐसे 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 अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु वा ईश्वर निराकार को ही कहेंगे, इसको कहेंगे निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कैसे हो बाबा, परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं, कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है, है तो वे भी आत्मा ना, परमात्मा भी क्या है, एक आत्मा है ना। भक्ति मार्ग में बहुत छू मत चले गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलग और बे। सिंपल बात क्या है, अलग और बे, अलग अल्लाह बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम, बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना ही वे उच्च पद पाते। वो समझ में भी आता है, स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं क्या कि हम कम पढ़ते, जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे। अटेंशन देंगे नहीं, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए, ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे, कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है, शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप क्या है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे, एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे, बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। क्या करेंगे, घायल कर देंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है, गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसे कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कौन सा गीत, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं, ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम भी शिवलिंग की बैठ कर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। राम पूजा कर रहा है, ये है रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है, हाँ जी कौन, राम पूजा कर रहा है, ये है रॉन्ग क्यों, अभी रॉन्ग ये तो हम तो सबको एग्जाम्पल देते रहते हैं जी,
तो आपन की भक्ति चालू होती है
तो फिर ठीक क्या है, राम द्वापर में राम की और राम पूजा नहीं कर सकता,
ऐसा कोई राम था नहीं,
ऐसा कोई राम हुआ ही नहीं। यदि वो राम त्रेता में हुआ तो जो राम त्रेता में था, बाबा कहते सभी तो राम थे ना त्रेता में, सभी सीता ही थी है ना, सभी राम सभी पुरुष राम सभी स्त्रियां सीता थी, तो त्रेता में तो कोई पूजा करता ही नहीं, सत्युग में कोई पूजा करता ही नहीं। ये तो पूजा शुरू होती है द्वापुर से, भक्ति शुरू होती है द्वापुर से, तो दिखाना रॉन्ग हो गया ना। देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं, तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे, देवता और मनुष्यों में रात दिन का फर्क, वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं, कैसे चक्र फिरता रहता है, कैसे चक्र फिरता रहता है, किसी को भी पता नहीं है, तुमको अभी पता पड़ा है, हम सच सच देवता बनते, हम सच सच देवता बनते, हम ही देवता थे फिर हम सच सच देवता बनते, अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे, अभी तुम वंदर खाते हो, अभी तुम वंदर खाते हो, यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पहले पुजारी था, इस जन्म में पहले पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंदर लगता है हम वो बन रहे, हम वो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, तुम हो अननोन वॉरियर, किसी को पता ही नहीं है कि आप योद्धा हो, सैनिक हो, नॉन वायलेंट, और आप कोई हिंसा नहीं करते, अहिंसक सेना हो, सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कचारी ना लड़ाई, ना वो लड़ाई, काम अलग है क्रोध अलग, अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक नॉन वायलेंस सेना, सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी, महाभारत लड़ाई में मेघ के नाम दिखाए हैं, ये मेघ नहीं है, तो लड़ाइयां कौन करते हैं, सारे पुरुष लड़ते हैं, वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां, मेजोरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो, दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं, वो तो समझते हैं नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा, सतयुग नव युग है ये तो बड़ा क्लियर है, तो बाबा राय देते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे, और किसको समझाएंगे भी, ये सब युक्तियां हैं, ये सब क्या हैं, युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम्हें ही समझ सकते, तुम ही समझ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, अपने को रिफ्रेश करने के लिए ये गीत बहुत मदद करते हैं, अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी, बाकी जो जाति धारणा नहीं कर सकते हैं, जाति धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या होता है, बाप कहते हैं घर बैठ बाप को याद करो, अपना जाके घर बैठो और बाप को याद करो, स्कूल में नहीं बैठ सकते, पाठशाला में, पाठशाला में याद करने के लिए नहीं बैठ सकते क्या, बाबा ने कहा है पाठशाला में बैठकर याद करो या घर में बैठकर याद करो, हम तो स्कूल में नहीं बैठ सकते क्या, मैं स्कूल में बैठ करके याद नहीं करना, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ये याद करने के लिए नहीं है। याद करना है तो अपने घर जाके याद करो, काम करते हुए याद करो, चलते फिरते याद करो, याद तो सिर्फ पढ़ने के लिए आना है। श्रीमत पे चलो, यहाँ स्कूल स्कूल में सिर्फ एक घंटा पढ़ने के लिए आना है। ये स्कूल पढ़ने के लिए है, ये होमवर्क करने के लिए नहीं है। होमवर्क अपने घर में जाकर करो, क्योंकि याद करना तो होमवर्क हो गया ना। होमवर्क घर में करना होता है, वो होम का वर्क है, आप उसे घर यहाँ बैठ करके कर रहे हो। यहाँ का क्या मतलब, आप यहाँ का स्कूल में बैठकर होमवर्क करो। गृहस्थ
चलते फिरते कहीं भी थोड़ी वो करना है।
बिल्कुल, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, मंत्र माना सलाह। ये सलाह याद रखो कि बात को याद करो और पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो उसे भी याद कर सकते हैं ना। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी है, तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है। वे भी वो साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। बड़ होशियार पेंटर हो, कोई बहुत होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया है, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है, बोलो तुमको पावन बनने से काम है। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहां रह नहीं सकती, इस दुनिया में पवित्र आत्मा रह नहीं सकती, वे चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य, इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है, ये बेहद का चाकू है, वे हैं हद के, ये है बेहद की बात। जिस पर आधा कल्प देवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है ना, परंतु ये है सारी बेहद की बात। हाँ जी,
पवित्र आत्मा नहीं रह सकते,
जो आत्मा पवित्र बन गई वो इस गंदी दुनिया में कैसे रहेगी, वो तो फिर सतयुग में जाके रहेगी ना।
में जाएगी।
हाँ जी,
वैकुंठ में जाएगी।
हाँ, उसे शरीर छोड़ रहे, अभी श्री कृष्ण की आत्मा, उनके साथियों की आत्मा पवित्र बन गई, तो उन्होंने शरीर को छोड़ा, यही जन्म ले लिया। खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी देहज की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं नहीं है, नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं वो कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तो बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था तो साक्षात्कार से बहुत बहलते थे। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, वे पाठ फिर और है, नहीं समझ रहे हैं, पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, वे पाठ फिर और है। और साक्षात का पाठ ऐसे बदल जाएगा, अब पाठ चेंज हो गया। गीत भी है ना, हमने जो देखा तो तुमने नहीं देखा, हमने जो देखा तो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे इम्तिहान के दिन नाजुक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स के पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, अभी तुम नॉलेज, तुम जैसे नॉलेजफुल हो। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो, पैसे हो, सभी फुल तो नहीं होते, स्कूल में हमेशा नंबर वार होते हैं, ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है, इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई संधार न हो, तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। क्या बनेंगे? चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा, ये होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, ये बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट हो रहा है। ये बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, हर बात कोई नई नहीं है, 5000 साल बाद हूबहू रिपीट हो रही है। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया खुद का खिलाती, नहीं तो माया क्या करेगी, आपको दुखी बनाएगी। अब क्या बनना चाहते हैं वो आपका पाठ। तो तुम सभी आशिक हो, किसके आशिक हैं भाई? एक माशूक, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं, वो आकर सभी को सुख देते हैं, आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना, इस खुशी में रहना है। जान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना। ज्ञान के जो गीत है उनको सुनना, जो भक्ति के गीत है उनको भी सुनो, परंतु अर्थ सुनने और सुनाने के लिए उसके एक एक लाइन का अर्थ समझो और फिर सबको सुनाओ, ताकि उनको समझ में आए कि गीत बनता है तो कैसे बनता है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंधों से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत हाँ। माया के संबंध कौन से हैं भाई, जिसको हमें तलाक देना है, डाइवोर्स देना,
शरीर और शरीर के संबंध,
देह और देह के सारे संबंध माया के संबंध है, इनको माया के संबंध क्यों कह दिया भाई?
माया रुलाने वाली,
रावण रुलाने वाला होता है,
जो बुराइयों से संबंध रखे उन बुराइयों को दूर हटाना है।
माया जो हमें कमजोर बनाती है, जो हमें अभाव में लाती है, माया कहा जाता है अभाव को, जो नहीं है, ज्ञान का अभाव, प्रेम का अभाव, शांति का अभाव, पवित्रता का अभाव, ये माया है। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, हमारे जितने भी ये माया के संबंध है, इन सब मेरा बेटा मेरा भाई दे के सारे संबंधी हमें दिन प्रतिदिन क्या करते जाते हैं, पतनोन्मुख करते जाते हैं। और बाप के संबंध में क्या होता है हमारा, हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं, हमारे देह के रिश्ते खत्म, ठीक है। तो सौदा करने बाप के संबंध से सौदा कर करने वाले, हमने सबके साथ तो अकाउंट बनाना है कार्मिक, ये भी आत्मा मेरे बाप का बच्चा है, सब आत्माएं मेरे बाप का बच्चा। जब ऐसे सोचेंगे तब जो है आपकी सोच कितनी श्रेष्ठ सोच बन जाएगी, मोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे, मोह जीत भाव मोह जीत बन जाएंगे। जब स्मृति से पुराना सौदा, अब बाबा कहते स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, इसका क्या मतलब है, सिंगल बन जाए स्मृति से, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करो, कौन सा सौदा कैंसिल करेंगे, आत्मा का क्या क्या कैंसिल करें,
संस्कार,
हाँ जी,
पुराने स्वभाव संस्कार सब चेंज करने में,
पुराने सौदे, ये सौदा कैंसिल करना है, जो आपने शादी कर रखी है वो रिश्ता कैंसिल, वो बंधन काट दो, सिंगल बन जाओ, अकेले हो जाओ, मैं अकेला हूँ बस, ऐसे ऐसे सख्त काम करता है, छोटे मोटे काम नहीं करता। अब स्मृति से मतलब शारीरिक रूप से वैसे संसारिक रूप से इकट्ठे रहे हैं, परंतु अब अपनी बुद्धि में स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल, जो पुराना रिश्ता जोड़ा था ना वो कैंसिल, अब अकेले हो जाओ, सिंगल बस, तलाक हो गया हमारा। हाँ जी, सिंगल बनो बस, मैं अकेली आत्मा हूँ, मेरा बाप है और कोई नहीं है, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो लेकिन कंपेनियन में, सहयोगी और कंपेनियन, मतलब उसको कंपनी नहीं बनाओ कि वो मेरा साथी है, साथी नहीं, सहयोगी है परंतु साथी नहीं। साथी और सहयोगी में क्या अंतर होता है? कंपेनियन एक बाप को बनाओ बस, मेरा साथी एक भगवान है बस, मेरा साजन, मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र, मेरा संबंधी एक ही परमात्मा है बस, तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाए। माया जीत, मोह जीत, विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो जाए, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। निर्वा मौत मलुकाशिका, इसको कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लग, ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते, क्या बनते हैं? विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ा। सत्यता की विशेषता से जितना तुम्हारे अंदर सच्चाई भरती जाएगी उतना आपका आत्मा रूपी डायमंड चमकता जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपना। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ सृष्टि के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एकनामी, एकानामी, एक नामी और दूसरा एकानामी। एक नामी का अर्थ होता है एक बाप को याद करने वाला, एका नामी माना बचत करने का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर, आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी, संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।